तीसरा चैप्टर इतिहास की प्रकृति नेचर ऑफ हिस्ट्री विज्ञान कला और दर्शन। इतिहास का अर्थ अवधारणा एवं परिभाषाएं नित्य नूतन रूपों में प्रस्तुत की जा रही है। इतिहास का अर्थ अवधारणा एवं परिभाषाएं नित्य नूतन रूपों में प्रस्तुत की जा रही है। इसी प्रकार इतिहास की प्रकृति एवं स्वरूप के संबंध में भी अनुदित वैज्ञानिक शोधों आविष्कारों एवं अन्वेषणों के कारण चिंतन में परिवर्तन होता जा रहा है। 20वीं शताब्दी ज्ञान के विस्फोट का काल है, इसीलिए इस सदी के प्रारंभ में इतिहास के विद्वानों ने एक महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद प्रश्न किया कि इतिहास की प्रकृति क्या है। इतिहास अपने प्राकृतिक स्वरूप में विज्ञान है अथवा कला? इंग्लैंड में सर्वप्रथम इस प्रश्न को उठाने वाले प्रोफेसर जेबी व्यूरी थे। उन्होंने 1903 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा था कि हिस्ट्री इज ए साइंस नो लेस एंड नो मोर। इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। इतिहास का स्वरूप वैज्ञानिक है अथवा कलात्मक, उसके संबंध में विद्वानों के दो प्रमुख समूह हैं जिनके विचारों का संक्षिप्त विवरण अनुवर्ती पंक्तियों के अवधेयार्थ प्रस्तुत है। इतिहास कला है, हिस्ट्री इज आर्ट। प्राचीन काल से ही इतिहास को एक ऐसी कथा या कहानी के रूप में जाना और कहा जाता रहा है जिसे पढ़कर या सुनकर रोमांच होता था। वह साहित्य को आधार प्रदान करने वाला, राजनीति का सारथी या संरक्षक तथा संस्कृति का उद्घोषक है। प्रोफेसर जे बी ब्यूरी ने कहा है कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्यता तथा यथार्थता का प्रतिष्ठापन कठिन होगा। और मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। प्रोफेसर व्यूरी का यह मानना था कि इतिहास का साहित्यिक रूप उसके वैज्ञानिक स्वरूप में बाधक है और साहित्य को वह या तो कला का अंग मानते रहे या कला को साहित्य का अंग। परंतु वास्तविकता यह है कि साहित्य तो कला का भी आधार है और विज्ञान का भी, क्योंकि साहित्य केवल कला, उपन्यास, नाटक या कविता मात्र नहीं है, वह तो निबंध और प्रबंध भी है। आइए, रिचर्डस का कथन है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इसी प्रकार 1857 ईस्वी में हेनरी पीरेन ने एक लेख में कहा था कि इतिहास प्राचीन काव्य है तथा काव्य के रूप में हमारे स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि मानवीय रुचि की पूर्ति काव्य तथा इतिहास द्वारा होती है। क्रोचे के अनुसार कला व्यक्तिगत अंतर्ज्ञानात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अतः इतिहासकार का पुनित कर्तव्य तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह मात्र अभिव्यक्ति नहीं वरन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें कला की आवश्यकता का विशेष महत्व नहीं है। अनुसंधान इतिहास का मूल तत्व है, परंतु कला को साहित्य से सापेक्षित करना कहाँ तक उचित हो सकता है? यह एक हठधर्मिता पूर्ण बात नहीं मानी जानी चाहिए। साहित्य और कला को एक रूप समझने से ही इतिहास कला या विज्ञान नहीं रह पाएगा, यह बात समझ में नहीं आती। यह तो समझ लिया गया है कि इतिहास विज्ञान नहीं है, परंतु यह कहना तर्कसंगत एवं उचित प्रतीत होता है कि विषय वस्तु के प्रति इतिहासकार का दृष्टिकोण सर्वथा वैज्ञानिक होता है। ग्रोसे का कथन है कि हिस्ट्री सब स्यूमेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ आर्ट। एक वैज्ञानिक प्राकृतिक तथ्यों का अवलोकन मात्र करता है, परंतु कलाकार और इतिहासकार में समानता के साथ दोनों में अवांतर अंतर भी है। श्री डिल्थे महोदय ने 1883 तथा श्री सीमेल महोदय ने 1892 में इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विवेचन किया है। श्री डिल्थे के अनुसार इतिहासकार द्वारा अपने मानस में अतीत को पुनः प्रतिष्ठापित करने का अभिप्राय अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का कथन है कि इतिहास में यथार्थता के साथ अभिव्यक्ति की कुशलता, रोचकता, उदाहरणों का चयन तथा चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस गंभीर अर्थ में इतिहास निश्चित रूप में कला है। राउज के अनुसार यदि इतिहास को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करके प्रस्तुत किया जाए तो इतिहास रसहीन एवं अत्यंत क्लिष्ट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास के अध्ययन में कोई रुचि नहीं लेगा। अनेक पाश्चात्य विद्वानों का भी विचार है कि इतिहास को विज्ञान के समक्ष प्रस्तुत करना एक क्लिष्ट कल्पना है। ब्लूक के अनुसार सभी वैज्ञानिक विधाओं के पाश्चात भी इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित नियमों का निर्धारण अब तक संभव नहीं है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का मत है कि इतिहास कला है, क्योंकि इसमें यथार्थता के साथ विवरण संबंधी कुशलता, रोचकता, दृष्टांतों का चयन तथा चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस गंभीर अर्थ में इतिहास निश्चित रूप से कला है। जी एम ट्रेविलियन ने लिखा है कि इतिहास को सरस बनाने के लिए इतिहासकार को मैकाले की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इतिहासकार को मैकाले की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा, द डिस्कवरी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स शुड टू बी साइंटिफिक इन मेथड, बट दैट द एक्सपोजिशन ऑफ द देम फॉर द रीडर पार्टूक ऑफ द नेचर ऑफ आर्ट। अर्थात ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, परंतु पाठकों के लिए बोध गम्यता की दृष्टि से इसकी अभिव्यक्ति की प्रकृति वस्तुपरक होनी चाहिए। ए एल रॉबर्ट्स के अनुसार described history as an art that, however much historical writing may be supplemented by scientific methods and equation, there will always remain history as an art. Rainier के अनुसार बौद्धिक इतिहास अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इतिहास का बौद्धिक अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि मनुष्य का अध्ययन प्रयोगशाला में संभव नहीं है। इतिहासकार को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि उसका इतिहास कई शताब्दियों के लिए लिख दिया गया है, इसीलिए निर्भीक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, परंतु वैज्ञानिक को सदैव भय रहता है कि उसके निष्कर्ष का सूक्ष्म विश्लेषण कभी भी कोई वैज्ञानिक कर सकता है। ट्रेविलियन ने यह उचित ही कहा है कि अंतस्थल में इतिहास की अभ्यर्थना परिकल्पनात्मक है, यथार्थकता ऐतिहासिक अध्ययन की कसौटी है और इसका उत्प्रेरक उद्देश्य काव्यात्मक है। इतिहासकार की यह कुशलता है कि पाठक को अतीतकालीन समाज में परिभ्रमण कराकर उसके मानस को कितना अतीत में ले जा पाता है। यदि इतिहासकार में कलात्मक बोध का अभाव है तो वह अपने पाठक को सभी तथ्यों से अवगत कराने में सफल नहीं होगा। जन सामान्य के सूक्ष्म दृश्यों का अवलोकन और राजमहल के विलासमय एवं वैभवपूर्ण जीवन का परिचय कलात्मक बोध से ही इतिहासकार करा सकता है। परंतु इतिहासकार और कवि की कल्पना में अंतर है। श्री वृंदालाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी का आधार ऐतिहासिक है, परंतु कल्पना प्रधान है। परंतु इतिहासकार यथार्थता का चित्रण कल्पना के परिवेश में काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करता है, क्योंकि इतिहासकार स्थान समय तथा तथ्य की परिधि में आबद्ध होता है। यही इतिहासकार की अनिवार्यता और बाध्यता है। फ्रायड ने भी कल्पना के विषय में लिखा है कि अतीत हम तक पहुंच नहीं सकता, परंतु हमारी कल्पना उसमें प्रवेश कर सकती है। अतीत का छाया चित्र मात्र हमारे समक्ष होता हुआ दिखाई देता है कि जीवितावस्था में अतीत कालिक मनुष्य किस प्रकार थे। कार्ल पियर्सन के अनुसार कलात्मक शैली को भी विज्ञान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है, क्योंकि कला से ज्ञान को दक्षता प्रदान की जाती है। कला ही अभिव्यक्ति का प्रेरणा का स्रोत है। विज्ञान तथा कला का संबंध मछली और पानी, मनुष्य एवं वातावरण जैसा होता है। इतिहास और विज्ञान के मध्य मौलिक भिन्नता यह है कि इतिहास में हम साधारण सरल व कलात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, न कि विज्ञान की तरह प्रतीकों का। हम इतिहास की व्याख्या कलात्मक विधि से नहीं कर सकते। इतिहास में गुणात्मक व्याख्या होती है, गणितीय व्याख्या संभव ही नहीं है। एक इतिहासकार की सफलता अपने भाषा और शैली के अध्ययन से पाठकों की भावनाओं और संवेदनशीलता को प्रभावित करने में है, लेकिन विज्ञान में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। E.H. Carr का कथन है कि यदि इतिहासकार में एक कलाकार की भांति चयनता का गुण नहीं है, तो वह सफल इतिहासकार नहीं हो सकता। एक कलाकार की विशेषता है कि वह अनावश्यक तथ्यों का परित्याग करता है तथा आवश्यक तथ्यों को यथोचित स्थान देता है। तथ्यों के विवरण में इतिहास यथार्थ किंतु किसी विशेष पार्टिकुलर विषय पर प्रकाश डालता है, जबकि विज्ञान समान विषयों अर्थात जनरल मैटर का विवरण देता है। कार्लाइल को सफल इतिहासकार नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि उसकी रचनाओं में वैज्ञानिक विधियों का सर्वत्र अभाव दिखाई देता है। मनुष्य का भौतिक पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण इतिहास का क्षेत्र है। इसका एक भाग भौतिक है और यहीं पर वैज्ञानिक विधा की आवश्यकता होती है, परंतु इसका अन्य भाग सांस्कृतिक है, जहां कला की आवश्यकता होती है। इतिहासकार की अंतर चेतना भावात्मक, काव्यात्मक एवं रसात्मक शैली का परिचायक है। इसीलिए लोक जीवन में काव्य के प्रति अधिक रुचि है। इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों को रस संपृक्त कर यथार्थता को प्रस्तुत करता है। इसीलिए आज भी होमर, कालिदास और तुलसी अधिक लोकप्रिय हैं। कला सौंदर्य शास्त्र की अभिव्यक्ति है। यदि तथ्य और कथ्य दोनों के रूप होंगे तो इतिहास में कोई रुचि नहीं लेगा। इसीलिए इतिहासकार तथ्यों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। मिकाइले, कोलदिल, मोटले तथा गिवन आदि कुशल कलाकार के साथ साथ सफल इतिहासकार माने जाते हैं। इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप के प्रति विश्वासी प्रोफेसर J.B. व्यूरो ने भी यह स्वीकार किया है कि इतिहास विज्ञान तथा कला का सुंदर सम्मिश्रण है। सामाजिक आवश्यकता के परिवेश में A.L. Rauj का स्पष्ट मत है कि इतिहास सदा काल रहेगा, क्योंकि वर्तमान समाज की यही आस्था तथा विश्वास है। स्पष्ट है कि इतिहासकार अब इतिहास को विज्ञान या कला के विवाद से हटाकर केवल उसका लेखन, वैज्ञानिक अनुशासन अर्थात तथ्यात्मक यथार्थ की, घटनाओं के पात्रों की, घटना क्रिया की आभ्यंतरिक गति के स्पंदनों की अभिव्यक्ति से इतिहासकार को दूर रखकर इतिहास को कला या साहित्य नहीं कहने देना चाहते थे, परंतु अपना मत है कि इतिहास तथ्यों के अन्वेषणात्मक पद्धति में विज्ञान है और यथार्थ तथ्यों की अभिव्यक्ति में कला है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास का कला स्वरूप रसात्मक, सौंदर्य बोधक एवं शैलीगत होता है और तथ्य की अन्वेषणा का स्वरूप वैज्ञानिक है। अतः तथ्य और कथ्य दोनों विज्ञान और कला के रूप में परस्परालंबित हैं। अतः कहा जा सकता है कि इतिहास एक ऐसी कला है जिसकी हर रूपरेखा में आकर्षण और नयापन होता है।